हिडन फाइल्स साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ ओनली ऑन रेड एफएम। वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम रेडियो शो हिडन फाइल्स। साइबर वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसमें जो हो रहा है वो आपकी नजरों के सामने नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जिंदगी भर सामने आ सकते हैं। ऐसा ही एक केस अब आपको सुनाएंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे।
जयंत ठाकुर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीनियर क्वालिटी ऑडिटर हैं। उस दिन उन्होंने अपने बॉस को मंथली ऑडिट्स की फाइल सबमिट की और कहा,
सर कल ही गुजरात से लौटा हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए।
जयंत के बॉस श्रीधर जी आम बॉसेस की तरह नहीं थे, तुरंत छुट्टी अप्रूव कर दी।
हाँ, ट्रैवल एग्जर्शन हो जाता है, टेक रेस्ट।
श्रीधर जी उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर हैं। उनका काम है कि देश की सभी केमिकल फैक्ट्रीज का रेगुलर ऑडिट करना और क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी मेजर्स चेक करते रहना। उस दिन मंडे था और श्रीधर जी घर से निकल ही रहे थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हुए उन्होंने टीवी ऑन किया और न्यूज लगा दी। न्यूज स्क्रॉल करते हुए अचानक उनकी नजर एक हेडलाइन पर जाकर अटक गई। आंध्र प्रदेश में एक केमिकल फैक्ट्री में दुर्घटना और 3 लोग घायल। कहा जा रहा है कि बॉयलर 20 साल पुराना था और उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था। श्रीधर जी ने मन ही मन सोचा, अरे ये तो अभी थोड़े ही दिन पहले तो ऑडिट हुआ था। श्रीधर जी भागकर अपने ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपने पियून से केमिकल फैक्ट्री की लास्ट ऑडिट रिपोर्ट लाने को कहा। वो काफी टेंस थे। उन्हें पता था कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन उन तक भी आएगी और उनकी नौकरी भी जा सकती है। पियून थोड़ी देर में ऑडिट रिपोर्ट ले आया। श्रीधर जी तेजी से उसके पन्ने पलटने लगे। पूरी रिपोर्ट में बॉयलर मेंटेनेंस का कहीं जिक्र ही नहीं था। कुछ कॉस्मेटिक रिव्यू कमेंट्स के साथ फैक्ट्री को क्लीन चिट दे दी गई थी। ठंड के मौसम में भी श्रीधर जी के माथे पर पसीना आ रहा था। उन्होंने रिपोर्ट में ऑडिटर का नाम देखा, जयंत ठाकुर, और उन्होंने तुरंत जयंत को तलब कर लिया। थोड़ी देर में जयंत श्रीधर के सामने थे। श्रीधर ने कहा,
आपकी रिपोर्ट में बॉयलर मेंटेनेंस का जिक्र क्यों नहीं है, ये कैसे हो गया जयंत जी?
जयंत ने कहा,
सर मैंने तो बिल्कुल सही जांच की थी, चेकलिस्ट के हिसाब से वी वेरीफाइड एवरीथिंग एवरी इंफॉर्मेशन।
श्रीधर ने कहा,
आपको पता है ना जयंत जी कि इतना बड़ा हादसा सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, जांच में आपकी रिपोर्ट पर भी सवाल उठेंगे, स्क्रूटनी के लिए तैयार रहना।
मामला बहुत सीरियस था। सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी गठित हुई और इंक्वायरी शुरू हो गई। फैक्ट्री के एम्प्लॉइज और सीनियर ऑफिसर्स कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, सब संभल संभल कर बोल रहे थे और ऐसा लग रहा था वो वही कह रहे हैं जो उनसे बोलने को कहा गया है। फिर तय हुआ कि कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज से बात की जाए। कंपनी के एचआर रिकॉर्ड से उन एम्प्लॉइज की डिटेल्स निकाली गई जो कंपनी छोड़ चुके हैं, और जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे राज खुलना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि उस फैक्ट्री में मजदूरों की हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है और प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते, और इस तरह के हादसे पहले भी हुए हैं पर यह इंफॉर्मेशन कभी बाहर नहीं जाती। इस बार न्यूज मीडिया में चली गई और इसलिए लोगों को पता पड़ गया। कंपनी के वर्किंग एनवायरमेंट में अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस ठीक नहीं थे तो यह चीज ऑडिट रिपोर्ट में जरूर होनी चाहिए थी, और इस तरह यह जांच श्रीधर तक भी पहुंच गई। श्रीधर ने वो ऑडिट रिपोर्ट जांच कमेटी को सबमिट कर दी जो कि जयंत ठाकुर ने बनाई थी, और जांच कमेटी रिपोर्ट देख के चौंक गई। जांच कमेटी के चेयरमैन प्रकाश जी का मुझे कॉल आया और उन्होंने मुझसे जो केस डिटेल शेयर किए उससे मैं भी हैरान रह गया। प्रकाश जी ने कहा कि उनकी जांच में पता चला है कि इस कंपनी का ऑडिट तो काफी टाइम से नहीं हुआ है और यहां हमारे सामने फुल फ्लेज्ड ऑडिट रिपोर्ट पड़ी हुई है। कमाल की बात यह है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जैन ठाकुर की उस फैक्ट्री को विजिट करते हुए फोटोज भी हैं, उनकी मैनेजमेंट के साथ भी फोटोज हैं। क्या ये सारी फोटो झूठी हैं? और अगर ऐसा है तो फिर ये तो साइबर क्राइम का मामला बनता है। मैंने प्रकाश जी से वो डिटेल शेयर करने को कहा, पर प्रकाश जी ने कहा कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल केस है, और उनके पास रिपोर्ट की हार्ड कॉपी है और यह कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए जांच ऑफिस में ही हो पाएगी। मैं उनके बताए गए टाइम पर उनके ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में रिपोर्ट देखने के बाद मैंने प्रकाश जी से यूजुअल जानकारी मांगी, क्या इस रिपोर्ट की कोई डिजिटल कॉपी नहीं है? प्रकाश जी ने ना में सर हिलाया। कैन वी आस्क डिजिटल कॉपीज ऑफ दीज पिक्चर्स फ्रॉम जयंत ठाकुर? प्रकाश जी ने कहा,
हमने मांगी थी पर जयंत ने कहा उसका फोन खो गया था और वो पुरानी पिक्चर्स भी खो गई।
मैंने कहा, सर कुछ तो गड़बड़ है, पर बिना डिजिटल रिकॉर्ड्स के मैं क्या जांच करूं, यहां तो सब फिजिकल प्रिंटआउट्स हैं। प्रकाश जी एडमेंट थे कि अब इन्हीं में से हमें सच खोजना है। रिपोर्ट में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज लगाई गई थी, बैकग्राउंड में फैक्ट्री साफ दिख रही थी जिसमें जैन जी कुछ एम्प्लॉयज के साथ खड़े थे। एक फोटो में वो कोई मशीन टेस्ट कर रहे थे। जयंत ने अपने जो ट्रैवल बिल लगाए थे उनकी भी जांच की गई। उन्होंने जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया, जिस टैक्सी से ट्रैवल किया, सभी बिल भी कंफर्म कर दिए गए, सभी ऑथेंटिक थे। तो फिर कोई कारण नहीं था कि जयंत पर शक किया जाए। मैंने प्रकाश जी को सलाह दी कि अभी इस रिपोर्ट को रहने देते हैं, इन फोटोज से तो यही लग रहा है कि जयंत जी ने ऑडिट किया है, क्या हम एक बार जैन जी की फोन की भी जांच कर लें, उससे पता पड़ जाएगा कि वो वाकई उस डेट में उस कंपनी में विजिट किए थे या नहीं। इंक्वायरी कमेटी ने जैन जी से फोन मांगा और हमने गूगल डैशबोर्ड के थ्रू जयंत की उस दिन की लोकेशन ट्रैक की और जो हमें दिखा उसने हमें एक बार फिर चौंका दिया। जयंत जी वाकई उस दिन ट्रेन से आंध्र प्रदेश गए थे और उस फैक्ट्री में विजिट भी किया था। तो फिर सच क्या था? हमने जयंत के बारे में थोड़ा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू भी जानकारी इकट्ठी की और उनके फेसबुक पर हमें उनके ऑडिट विजिट के दिन की एक पोस्ट मिली। इस पोस्ट में वो एक रेस्टोरेंट में थे कुछ दोस्तों के साथ। फोटो वाकई एक रेस्टोरेंट के साथ टैग की गई थी। हमने उस फोटो में दिख रहे बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया तो वो जयंत के दोस्त ही थे और उसी सिटी में रहते थे। मतलब सारे सबूत, सारे रिकॉर्ड्स जयंत के फेवर में ही थे। तो अभी तक की एनालिसिस यही साबित कर रही थी कि जयंत ने फैक्ट्री विजिट तो की पर शायद ऑडिट सीरियसली नहीं किया। पर यह बात जांच कमेटी की अपनी फाइंडिंग से मैच नहीं कर रही थी। प्रकाश जी का कहना था कि उनके पास किसी एक्स एम्प्लॉय का स्टेटमेंट है कि जयंत ने उस फैक्ट्री को ऑडिट के लिए कभी विजिट नहीं किया। तो फिर सच क्या था? मैं उस दिन घर में ही था और मेरी बेटी अद्विका की छुट्टी थी। अद्विका ने कहा,
पापा आप मेरे साथ बिल्कुल नहीं खेलते, यू आर ऑलवेज वर्किंग।
मैंने कहा, बस 5 मिनट, कुछ काम खत्म कर लूं फिर खेलते हैं। अद्विका ने कहा,
नहीं आपको अभी खेलना होगा, अभी के अभी।
मैंने कहा, ठीक है बस ये काम खत्म कर लूं फिर पूरा 1 घंटा खेलूंगा। अद्विका खुश हो गई,
पापा अब आप 1 घंटे कुछ नहीं करोगे और सिर्फ मेरे साथ खेलोगे।
मैंने कहा, अरे 1 मिनट, बस कुछ मैसेजेस के रिप्लाई देने हैं। अद्विका ने मेरे हाथ से फोन ले लिया और कहा,
नहीं अब कोई रिप्लाई नहीं, 1 घंटे फोन से कुछ नहीं होगा।
उसने फोन लेके एक ड्रॉअर में डाल दिया और उसके बाद करीब 1 घंटे तक हम लोग अलग अलग गेम्स खेलते रहे। 1 घंटे बाद जब मैंने फोन हाथ में लिया तो मुझे कुछ स्ट्राइक किया और मैंने प्रकाश जी को फोन लगाया। मैंने कहा, प्रकाश जी वो जयंत का फोन मैं एक बार फिर से चेक करना चाहता हूं। ऑफिस पहुंचकर मैंने जयंत के फोन की एक्टिविटी लिस्ट देखी और उस दिन की एक्टिविटी लिस्ट फिल्टर कर ली जब जयंत आंध्र प्रदेश की उस फैक्ट्री में विजिट के लिए गया था और जो हमें दिखा उससे हमारा शक सही निकला। ट्रेन की उस यात्रा के दौरान जयंत के फोन में कोई एक्टिविटी नहीं थी, मतलब उस दिन उस ट्रेन से जयंत का फोन गया था, जयंत नहीं। यह हमारे लिए एक बड़ा क्लू था। हमने जयंत की बाकी ऑडिट विजिट भी चेक की और हमारे सामने सच आना शुरू हो गया। चाहे गुजरात हो या उड़ीसा, जयंत का फोन ही ट्रैवल किया था, जयंत नहीं। ट्रैवल के दौरान जयंत के फोन में कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, तो यह तो लग रहा था कि जयंत ऑडिट के लिए ट्रैवल नहीं करता था। पर फिर फेसबुक पर उसकी पिक्चर्स, वो कैसे आई? हमने तुरंत वो पिक्चर्स content@scale.ai के थ्रू स्कैन की। ये एक डीप फेक डिटेक्शन टूल है और इस टूल ने हमें बता दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। जयंत का फेस इस पिक्चर में डाला गया था। जाहिर सी बात थी कि फिर जो पिक्चर्स जयंत के फैक्ट्री विजिट की सबमिट की गई थी उसमें जयंत का फेस किसी और के फेस से रिप्लेस किया गया हो, पर वो पिक्चर्स हमारे पास सिर्फ हार्ड कॉपीज में थी। हमारी इन फाइंडिंग से प्रकाश जी अचंभित तो नहीं थे क्योंकि उन्हें इसका शक था। हां, शायद टेक्नोलॉजी का इस तरह इस्तेमाल कर यह हुआ होगा, यह उनके लिए नया था। पर उनके लिए बड़ी बात यह थी कि यह सिर्फ जयंत कर रहे हैं या इसमें और भी लोग शामिल हैं। काफी सारे पुराने ऑडिट्स की फाइल खोली गई और उस पर एक डिटेल इंक्वायरी शुरू हुई। हमें यह जान के हैरानी हुई कि कई सारे लोग ऐसा कर रहे थे और यह बड़ा कॉमन है। ऑडिटर की जगह उसका फोन ट्रैवल करता है और ऑडिटर की फोटो लोकेशन टैगिंग के साथ भेज दी जाती है जिसमें ऑडिटर उस प्लांट में ऑडिट करते हुए दिख रहा होता है। ऑडिटर्स कुछ और एविडेंस के लिए अपनी कुछ और फोटोज भी क्रिएट करते थे जिन्हें वो अपने सोशल मीडिया वगैरह पर पोस्ट कर दिया करते थे। इस दौरान ऑडिटर ना तो ऑफिस जाता था और ना ही उसे ऑफिस का कोई काम करना होता था। ही इज फ्री टू डू एनीथिंग एट होम और एनीवेयर एल्स। पर ये फाइंडिंग सफिशिएंट नहीं थी। एआई डिटेक्शन क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेस पर काम करता है इसलिए ये डिटेक्शन टूल में हमेशा कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि वो गलत हो सकती है। फोन पर ट्रैवल के दौरान कोई एक्टिविटी ना होना भी जयंत जी द्वारा डिफेंड किया जा सकता था। हमें कुछ और भी चाहिए था। इतने में इंस्पेक्टर साहब ने सलाह दी, आजकल कोई भी व्यक्ति फोन के बिना 2-3 दिन रह नहीं सकता। अगर जयंत का फोन ट्रैवल कर रहा था तो वो फोन के बिना जी कैसे रहा था। इसका मतलब साफ था कि जयंत के पास एक और फोन भी होना चाहिए था और उस फोन में भी जयंत का व्हाट्सएप और सोशल मीडिया लॉगिन होना चाहिए। सबसे पहले हमने जयंत के जीमेल का दूसरा लॉगिन ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि जयंत का जीमेल सिर्फ इसी फोन से लॉग्ड इन है। इसका मतलब था कि जयंत का जो कोई भी दूसरा फोन था उसमें उसका कोई दूसरा जीमेल लॉग्ड इन होगा। पर जब हमने फेसबुक लॉगिन चेक किया तो हमें उसका दूसरा आईपी एड्रेस मिल गया। जयंत का फेसबुक 2 डिवाइसेस से लॉग्ड इन था। उस दूसरे आईपी से हम जयंत के दूसरे नंबर तक पहुंच गए। हमने जयंत के दूसरे नंबर से लिंक्ड यूपीआई रिकॉर्ड निकाले तो उस दिन की कुछ दिल्ली की पेमेंट्स दिख गई। जब हमने जयंत से उन पेमेंट्स के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा कि वो पेमेंट उसकी वाइफ ने उसके दूसरे फोन से की थी। बात एक बार फिर फंस गई थी। थोड़ा टाइम तो लगा पर हमें जयंत के एक दूसरे ऑडिट ट्रैवल के दौरान एक पेमेंट मिल ही गया जो एक ब्लड टेस्ट का पेमेंट था और ब्लड टेस्ट किसी और का नहीं, जयंत ठाकुर का ही था। और इसके साथ ही बेनकाब हुए बहुत सारे लोग, एक गैंग भी जो इनको इस तरह की सर्विसेज मुहैया कराता था। झूठ के पैर नहीं होते, वो बहुत दूर तक चल नहीं पाता। झूठ पकड़ा गया। लेकिन ऐसे केसेस से सेफ कैसे रहना है ये आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स ना तो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं ना डिलीट। अक्सर आपके फोन में एक से ज्यादा एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो आपका इस तरह का डेटा कलेक्ट कर रही होती है। यदि आप किसी भी तरह इस डेटा को झुटलाने की कोशिश करेंगे या मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो अच्छा यही है कि सच को सच ही रहने दें। साइबर स्पेस में एक्टिव रहने के साथ साथ अपनी ऑनेस्टी भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो लोग इंपर्सोनेट करते हैं या आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं या अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं वो अक्सर पकड़े जाते हैं।
हाय सर, मेरा नाम निखिल है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। अमित जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि अगर मैं अपने घर पर एलेक्सा लगाना चाहूँ तो मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए?
बिल्कुल निखिल जी, कोई भी कन्वीनियंस एक रिस्क के साथ आती है। एलेक्सा में भी वो सारे रिस्क एप्लीकेबल हैं। देखिए, अगर आप एलेक्सा यूज करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि एलेक्सा इंस्टॉल करते समय आप एक एप्लीकेशन भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। जब आप अपने फ़ोन की एप्लीकेशन की सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर जो भी कमांड आपने एलेक्सा को दिए होंगे उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप उस वॉइस हिस्ट्री से वो सारे कमांड सुन सकते हैं जो भी आपके एलेक्सा को दिए गए। समय समय पर ये कमांड आप डिलीट करते रहें और चेक करते रहें कि आपका एलेक्सा कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा। यदि आपने अपने एलेक्सा को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है ताकि आप अपने बिल पेमेंट कर सके, तो उसके साथ एक पिन कोड भी इनेबल कर दें। बिना पिन के एलेक्सा को बैंक अकाउंट से लिंक कर देना काफी खतरनाक हो सकता है। ऐसे केसेस भी आए हैं कि बच्चों ने बिना माँ बाप की मर्जी के एलेक्सा से कुछ ऑर्डर कर दिया और वो महंगी चीज घर पर डिलीवर हो गई और उसका पेमेंट भी हो गया था। अगर आपके घर का सिक्योरिटी सिस्टम आपके एलेक्सा से कनेक्टेड है तो भी उसमें पिन सिक्योरिटी सिस्टम इनेबल होना चाहिए कि बिना वो पिन बताए कोई भी उस सिक्योरिटी सिस्टम में कोई चेंजेस ना कर सके। इसके साथ ही ध्यान रखिए कि एलेक्सा आपको हर वक्त सुन रहा है। यदि आप नहीं चाहते कि एलेक्सा आपको सुने तो उसको स्विच ऑफ कर दीजिए या उसका पावर प्लग हटा दीजिए। निखिल की शंका का समाधान तो हो गया, लेकिन आपका भी कोई साइबर सवाल है तो आपको पता है वेयर टू रीच अस। इफ नॉट, एक बार फिर बता देता हूं, रेड एफएम इंडिया का सोशल मीडिया है हमारा एड्रेस, अल्टरनेटिवली रूट 64 फाउंडेशन का फेसबुक पेज है, वहां भी आप डीएम कर सकते हैं विद अ प्रॉमिस कि हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। वी टेक अ लीव, स्टे साइबर सुरक्षित विद रेड एफएम, हिडन फाइल्स बजाते रहो।